नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। देश भर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत अब तक 3,60,00,000 से अधिक लोगों की हुई स्वास्थ्य जांच। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में निर्णायक बदलाव लाने के लिए सरकार प्रयासरत। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का आरोप, वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल में जनता को परेशान करने का किया काम। और सोलन में जीएसटी बचत उत्सव के दौरान लोगों को जीएसटी कटौती के बारे में किया गया जागरूक। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत देशभर में अब तक 9,00,000 से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं। नई दिल्ली में आज एक निजी समाचार चैनल द्वारा आयोजित स्वास्थ्य सम्मेलन में उन्होंने बताया कि अब तक 3,60,00,000 से अधिक लोगों की जांच हुई है। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर तक जांच की संख्या 4 करोड़ को पार करने की संभावना है।
स्वस्थ नारी सशक्त नारी के माध्यम से हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया और हम 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती तक हम उसको ले जाने वाले हैं। इसमें अभी तक 9,00,000 कैंप्स लग चुके हैं, हेल्थ कैंप्स, और इसमें लगभग 3,60,00,000 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है।
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निर्णायक बदलाव लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। ऊना जिले के पालकवाह में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 2,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे बल्क ड्रग पार्क को केंद्र से पर्यावरणीय मंजूरी मिल चुकी है और ये परियोजना न केवल हरोली बल्कि पूरे प्रदेश के लिए आर्थिक विकास का नया अध्याय लिखेगी। अग्निहोत्री ने बताया कि हरोली विधानसभा क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपए की नई सिंचाई योजना स्वीकृत हुई है। इससे क्षेत्र में सिंचाई सेवाएं और अधिक सुदृढ़ हो सकेंगी। उन्होंने हरोली कॉलेज परिसर में 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कन्या छात्रावास का भी शिलान्यास किया। राज्य सरकार, नीति आयोग, पीजीआई और स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर नशा निवारण व पुनर्वास के लिए कार्य योजना तैयार कर रही है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार प्रदेश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने और नशे की लत से प्रभावित युवाओं को समाज की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए एक द्विआयामी रणनीति अपनाई गई है। उन्होंने बताया कि सरकार के प्रयासों से मंडी, लाहौल स्पीति, चंबा, सोलन और सिरमौर जिलों में 5 नए नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। प्रवक्ता के अनुसार जन जागरूकता प्रयासों के तहत 5,76,000 से अधिक लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया है। सेवा और सुशासन यानी जनसेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपके लिए ला रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार के रेलवे सुधार भारत की जीवन रेखा का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, विश्व स्तरीय यात्रा, बेहतर सुरक्षा और प्रत्येक नागरिक के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
पिछले एक दशक में हुए रेल सुधारों ने देश में क्रांति ला दी है और देश की जीवन रेखा को प्रगति के केंद्र में बदल दिया है। मोदी सरकार के कार्यकाल में भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए अधिक आरामदायक और सुरक्षित हुआ है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय रेलवे कनेक्टिविटी का एक निर्बाध सूत्र बुन रहा है। सरकार ने यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए अमृत भारत ट्रेन और नमो भारत रैपिड रेल भी शुरू की है। अगले 2-3 वर्षों में आम जनता के यात्रा अनुभव में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए 200 नई वंदे भारत ट्रेनें, 100 अमृत भारत ट्रेनें, 50 नमो भारत रैपिड रेल और 17,500 जनरल नॉन एसी कोच चलाने की योजना है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,300 से ज्यादा स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिससे विश्व स्तरीय सुविधाएं सुनिश्चित होंगी। भारतीय रेलवे ने कवच नामक एक अत्याधुनिक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली भी शुरू की है, जो सुरक्षा की एक अटूट परत प्रदान करती है और ट्रेन संचालन के लिए उच्चतम सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करती है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए 2030 तक एक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली बनाने के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य आम आदमी को परिवहन का एक सस्ता, सुरक्षित और विश्वसनीय साधन प्रदान करना है।
ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल में राहत देने के बजाय जनता को परेशान करने का काम किया है। शिमला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जहां एक ओर केंद्र सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी कम कर राहत दी, वहीं प्रदेश सरकार ने सीमेंट पर अतिरिक्त कर लगा दिया है, जिससे जनता को सीमेंट महंगा मिलेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि अपने कार्यकाल में सरकार ने 2000 से अधिक संस्थान बंद किए हैं और युक्तिकरण के नाम पर हर विभाग में पद समाप्त किए जा रहे हैं।
संस्थान 2000 से ज्यादा बंद कर दिए, हर जगह टैक्स लगा दिया गया और जीना मुश्किल हो गया गरीब आदमी का। और उसके बाद बेरोजगारों को रोजगार देने की बातें कहते हुए सत्ता में आई, कहा था पक्की नौकरी, 56 साल वाली नौकरी, पेंशन वाली नौकरी, और अब पद समाप्त कर दिए जा रहे हैं, चाहे वो HPTDC है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे कोई महकमा है, पद को कम किया जा रहा है और समाप्त किया जा रहा है युक्तिकरण के नाम से। नहीं तो सीधे सीधे समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब हिमाचल प्रदेश के लोगों को स्वयं अपने आप को एहसास हो गया है कि बहुत बड़ी चूक उनसे हुई है।
भाजपा ने सोलन में आज जीएसटी बचत उत्सव का आयोजन किया। इस दौरान लोगों को जीएसटी में की गई कटौती के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में कटौती के फैसले को सर्वहितकारी करार दिया और कहा कि इससे हर वर्ग को राहत मिलेगी। वन अधिकार अधिनियम 2006 से जुड़ी जटिलताओं को समझाने के लिए शिमला जिले के चौपाल में आज एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने अधिनियम की बारीकियों से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि सरकार ये प्रयास कर रही है कि अधिनियम का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंच सके। कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव 2 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, जो 8 अक्टूबर तक चलेगा। हर वर्ष इस उत्सव में भाग लेने के लिए प्रदेश सहित देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। जिला प्रशासन ने उत्सव के सफल आयोजन के लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने आज कुल्लू में एक बैठक कर विभिन्न विभागों के अधिकारियों व उत्सव के लिए गठित उप समितियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्सव में आयोजित किए जाने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन द्वारा जिले में 21 पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं। भाषा व संस्कृति विभाग जिला शिमला द्वारा राजभाषा पखवाड़े के अवसर पर आज गेटी थिएटर में विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाई गईं। इनमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों के स्कूली विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समापन समारोह में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ज्योति राणा ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। उन्होंने भाषा व संस्कृति विभाग की सराहना करते हुए कहा कि विभाग राजभाषा हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिए बेहतरीन कार्य कर रहा है। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन आज मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मां का ये स्वरूप अनंत और व्यापक है, कालरात्रि अर्थात काल को जीतने वाली है। मां काली की पूजा से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठों में श्रद्धालु सुबह से ही पूर्ण श्रद्धा व आस्था से पूजा अर्चना कर रहे हैं। राज्य के अन्य धार्मिक स्थलों में भी भजन कीर्तन से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत अब तक 3,60,00,000 से अधिक लोगों की हुई स्वास्थ्य जांच। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में निर्णायक बदलाव लाने के लिए सरकार प्रयासरत। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का आरोप, वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल में जनता को परेशान करने का किया काम। और सोलन में जीएसटी बचत उत्सव के दौरान लोगों को जीएसटी कटौती के बारे में किया गया जागरूक। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।